कुछ ही सेकंड बाद छाया ठीक उसके सामने आकर खड़ी होगी और प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, भैया भूखे पेट घर से बाहर नहीं जाते, आप तब तक इन्हें खत्म कीजिए, मैं इतने में अंशु बेबी का लंच रख देती हूँ। शान ने अब प्लेट पर निगाहें डाली तो उसमें रखे पनीर के छीलों को देखकर और उनकी खुशबू से ही वो समझ गया कि ये आरवी ने उसके लिए बनाकर भेजा है और जो शब्द छाया ने कहे वो भी आरवी के ही है। उसकी निगाहें तुरंत ही किचन की तरफ घूम गई। उसके उस तरफ निगाहें घुमाते ही एक परछाई जो बाहर झांक रही थी तुरंत ही अंदर हो गई। शान समझ गया कि आरवी ही थी वहां। उसकी खुशबू से ही उसके मुंह में पानी आने लगा था, पर ये आरवी ने बनाया है, यही सोचकर उसने प्लेट को वापस छाया की तरफ सरकाते हुए कहा, नहीं मुझे अभी भूख नहीं है। भैया खा लीजिए ना, भाभी ने अपने हाथों से आपके लिए बहुत प्यार से बनाया है, जबकि उनके सीधे हाथ में चोट लगी हुई है, उनसे कुछ पकड़ा भी नहीं जा रहा था, फिर भी उन्होंने सब खुद किया। अगर आप नहीं खाएंगे तो उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और उन्हें बहुत दुख होगा। छाया ने उसको सारी बात बता दी और उदास निगाहों से उसे देखने लगी। शान जो आरवी को हर्ट ही करना चाहता था, जब उसने सारी बात सुनी तो चाहकर भी इनकार नहीं कर सका। उसको चोट उसने खुद दी थी, उसके बावजूद आरवी ने उसके लिए चीले बनाए, ये देखकर मन को सुकून सा मिला। पर वो ये दिखा नहीं सकता था, अपने गुस्से और नफरत को उसके आगे कमजोर नहीं पड़ने दे सकता था। पर भूख भी लगी थी और आरवी का दिल भी नहीं दुखा पा रहा था वो। उसने तिरछी निगाहों से किचन की तरफ देखा तो वहां कोई नजर नहीं आया। ये देखकर शान ने दो चीलों को रोल कर लिया और खाने लगा। छाया का चेहरा खिल उठा, उसने झट से अंशु का लंच और वाटर बॉटल उसके बैग में डाली और प्लेट में बचे दो और चीलों को रोल करके शान की तरफ बढ़ा दिया। शान ने इनकार करना चाहा, पर चीले इतने स्वाद बने थे कि इनकार कर न सका और उन्हें खाते हुए ही अंशु को लेकर घर से बाहर निकल गया। छाया चहकते हुए किचन में पहुंची तो एंट्रेंस पर ही उसको आरवी खड़ी मिल गई। शायद वो उसके आने का ही इंतजार कर रही थी। छाया के आते ही आरवी ने परेशान निगाहों से उसे देखा, पर वो कुछ कह या पूछ पाती उससे पहले ही छाया ने चहकते हुए कहा, भाभी मानना पड़ेगा, आप तो भैया को बहुत अच्छे से समझने लगी हैं। मतलब हम में से कोई ये नहीं समझ सका कि वो खाना छोड़कर क्यों उठ गए, पर आप सब समझ गई और उनके लिए अपने हाथों से नाश्ता भी बना दिया, जबकि बनाने में आपको बहुत दिक्कत हुई। और भैया के तो क्या ही कहने, मतलब एक ही बाइट में पहचान गए कि आपने नाश्ता नहीं बनाया और खाना छोड़कर उठ गए। आपके हाथों में चोट लगी थी इसलिए आपको कुछ नहीं कहा और भूखे ही जाने लगे, पर जब आपके हाथ का बना नाश्ता मिला तो कितने सुकून से खा लिया। छाया अपनी ही धुन में बोले जा रही थी और आरवी उसकी बातें सुनकर गहरी सोच में डूब चुकी थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, अफसोस कि तुम्हारी बात पूरी सच नहीं है, मैं आज भी उन्हें समझ नहीं पा रही कि वो क्या और क्यों कर रहे हैं, और उन्हें मेरे दर्द या तकलीफ से अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे तो लगा था कि मेरे हाथ का बना खाएंगे भी नहीं, पर शायद उन्हें पता ही नहीं चला कि वो मैंने बनाया था, इसलिए शांति से खा लिया। आरवी अपने ही ख्यालों में गुम थी जब उसके कानों में छाया की गंभीर आवाज पड़ी, वैसे भाभी मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब आपने खुद इतनी मुश्किल के बाद भैया को नाश्ता तैयार किया तो उन्हें खुद देने की जगह मुझे क्यों भेजा। आरवी ने निगाहें घुमाकर उसे देखा तो छाया सच में काफी सीरियस लग रही थी। आरवी ने एक बार फिर मन ही मन कहा, अभी तो उन्होंने शायद धोखे में नाश्ता कर भी लिया, पर अगर मैं लेकर गई होती तो उसकी तरफ देखते भी नहीं। पर तुम्हें ये कैसे बताऊं कि क्यों भेजा तुम्हें, तुम समझ नहीं पाओगी हमारे रिश्ते की उलझनों को। आरवी के चेहरे पर अजीब सी बेबसी उभर आई जिसे उसने जल्दी ही छुपा लिया और गंभीरता से बोली, वो मेरा एक हाथ काम नहीं कर रहा तो मैंने तीनों चीज लेकर नहीं जा पाती, इसलिए तुम्हें भेज दिया। आरवी ने उसको झूठी वजह बताई, पर छाया को वजह ठीक लगी इसलिए उसने उस पर विश्वास कर लिया। आरवी अब डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गई तो सब यूं ही बैठे मिले, शायद उसका इंतजार कर रहे थे। अर्पिता जी ने आरवी को अपने पास बिठा लिया और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। बाकी सबने भी खाना खाना शुरू कर दिया। अर्पिता जी की परवाह देखकर आरवी की आंखों में नमी तैर गई, साथ ही लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई। ब्रेकफास्ट के बाद आरवी फिर सुभाष जी की सेवा में लग गई और उसके बाद एकेडमी चली गई। वैसे भी घर में रहने पर वो बेचैन ही रहती, बाहर जाने पर कम से कम मन बहल तो जाता है। शान अंशु को स्कूल छोड़कर सीधे अपने ऑफिस में चला गया, अपनी चेयर के पीछे सर टिकाकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। इसके साथ ही उसकी आंखों के सामने आरवी का दर्द से सना चेहरा घूम गया और उसने झटके से अपनी आंखें खोल दी। अपने चेहरे को अपनी हथेलियों से ढके एक बार फिर वो आरवी के ख्यालों में खो गया। अजीब कश्मकश में फंसा हुआ था वो, मोहब्बत और नफरत की जंग में ना ही नफरत को जीतने दे पा रहा था, ना ही मोहब्बत को हारकर दम तोड़ते देखने को तैयार था। आरवी को तकलीफ में देखना भी चाहता था, खुद जानबूझकर उसको दर्द भी दे रहा था, पर उसके दर्द उसकी तकलीफ से खुद उससे ज्यादा बेचैन था। चाहकर भी उससे नफरत नहीं निभा पा रहा था और प्यार को तो वो पहले ही अपनी नफरत के नीचे दफना चुका था। ना चाहते हुए आरवी का ख्याल उसके जहन में बसा हुआ था, आंखों के सामने उसका दर्द से सना चेहरा घूम रहा था। एक तरफ जहां आरवी के लिए ये सुबह खुशी के साथ साथ गम भी लेकर आया था, शान को देखकर निगाहों की बेकरारी तो कुछ हद तक मिट गई थी, पर उसकी बेरुखी उसके मन में व्याकुल और बेचैन कर गई थी। शान भी अपने ही जज्बातों से संघर्ष कर रहा था। दूसरी तरह आज पूरे एक महीने बाद ऐसा हुआ था कि जब निया की आंख खुली तो अर्जुन रूम में ही था। प्रेगनेंसी की वजह से अब निया जरा देर से उठा करती थी, किसी और के साथ तो वक्त मिलता नहीं था। बिल्कुल तन्हा हो गई थी, पर अब उसका हर पल उस बच्चे के साथ बीतता था जिसे वो एक महीने पहले तक अपनी कोख में ही मार देना चाहती थी। वो बच्चा जो अब तक दुनिया में आया तक नहीं था, उसकी तन्हाई का साथी बन चुका था। आज भी सुबह के 8 बजे सोकर उठी। रोज की तरह अपनी आंखों को मलते हुए वो उठकर बैठ गई और उन नींदी आंखों से सामने दीवार पर लगी घड़ी को देखने के बाद बेड से नीचे उतरने लगी। वैसे तो रोज उसके उठने पर उसे माला रूम में ही मिलती थी, पर आज माला वहां नहीं थी और निया ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। उसको वॉशरूम जाना था तो खुद से ही उठने लगी। निया ने जैसे ही अपने कदम जमीन पर रखे, एकाएक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कदम लड़खड़ा गए और गिरने से बचने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। शायद कुछ पकड़ने की कोशिश में थी वो। अचानक ही उसके हाथ से कुछ टकराया और उसने उस पर अपनी मुट्ठियों को कस दिया। अगले ही पल उसे अपनी कमर पर किसी की मजबूत बाहों का पहरा महसूस हुआ और वो उस शख्स की तरफ खींची चली गई। घबराहट के मारे उसने अपनी आंखों को भींचा हुआ था। एक हाथ से सामने खड़े इंसान के कॉलर को पकड़ा हुआ था तो दूसरी हथेली अपने बढ़े हुए पेट पर थी। शायद खुद से ज्यादा डर उसे बच्चे को कुछ होने का था और डर के मारे उसकी सांसें भी तेज चल रही थी। उसको तो कुछ होश ही नहीं था। अब भी अपनी आंखों को भींचे वो खुद में सिमटी हुई सी खड़ी थी। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी सी चिंता भरी आवाज पड़ी, तुम ठीक तो हो?